معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ پارٹ فور ہے، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ناول بلو برڈ گروپ۔ اس کے مصنف مظہر کلیم ہیں اور اسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں محمد اظہر لطیف۔ وہ اب ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہے، اس نے ایک کلب خرید لیا ہے، اس کا نام بھی اس نے جیفن کلب رکھا ہوا ہے، لوگی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے فون کر کے میری بات کراؤ اس سے، کرنل ریچرڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون سائٹ سے اٹھا کر لوگی کے سامنے رکھ دیا، اور لوگی نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ جافن کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ موت دبانا تھا۔ جافن سے بات کراؤ، میں لوگی بول رہی ہوں، لوگی نے کہا۔ یس میڈم، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے معتبانہ لہجے میں کہا گیا۔ یس، جافن بول رہا ہوں، چند لمحے بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جافن، میں لوگی بول رہی ہوں چیف کے آفس سے، چیف بھی میرے ساتھ موجود ہیں، لوگی نے کہا۔ تو کرنل ریچرڈ بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ لوگی نے دانستہ طور پر اس کا نام لیا تھا تاکہ دوسری طرف سے جافن سنبھل جائے۔ خیریت، کوئی خاص بات؟ جافن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم ریڈ ایجنسی میں پاکیشیا ڈیسک کے انچارج رہے ہو، چیف پاکیشیا کے سلسلے میں تم سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگی نے کہا۔ اوہ، کہیں تمہارے چیف نے پاکیشیا میں کوئی مشن تو مکمل نہیں کرنا، دوسری طرف سے خاصے پریشان سے لہجے میں کہا گیا۔ چیف سے خود ہی بات کر لو، لوگی نے کہا، اور ریسیور کرنل ریچرڈ کی طرف بڑھا دیا۔ کرنل ریچرڈ بول رہا ہوں، کرنل ریچرڈ نے بڑے باوقار سے لہجے میں کہا۔ یس سر، فرمائیے سر، آپ کس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جافن نے کہا۔ پاکیشیا میں میری دو سپر ایجنٹس اور ایک ماتحت سپر ایجنٹ کو ہلاک کر دیا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے مشن کامیابی سے مکمل کر لیا تھا، لیکن پھر وہ مشن بھی ختم ہو گیا اور میرے ایجنٹس بھی ہلاک کر دیے گئے، اور یہ سب کچھ وہاں کے انڈر ورلڈ کے لیے کام کرنے والے ایک آدمی ٹائیگر نے کیا ہے۔ کیا تم ٹائیگر کے بارے میں کچھ جانتے ہو، کرنل ریچرڈ نے کہا۔ یس سر، لیکن یہ ساری کارروائی ٹائیگر نے نہیں کی ہوگی، بلکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے دنیا کے خطرناک ترین ایجنٹ علی عمران کی ہوگی۔ ٹائیگر علی عمران کا شاگرد ہے، ویسے نہ ہی ٹائیگر کا اور نہ ہی علی عمران کا پاکیشیا سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق ہے۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا پرسرار چیف ضرورت پڑنے پر علی عمران کو ہائر کر لیتا ہے، اور علی عمران ٹائیگر سے کام لیتا ہے، جافن نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ یہ علی عمران کہاں رہتا ہے، اس کا فون نمبر وغیرہ، کرنل ریچرڈ نے پوچھا۔ سر، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک مخلصانہ مشورہ دوں، دوسری طرف سے جافن نے کہا۔ ہاں بولو، کھل کر بات کرو، کرنل ریچرڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سر، اس عمران کو چھیڑے بغیر مشن مکمل کر لیں، یہ شخص تو افریت ہے، اکریمیا کی ریڈ ایجنسی، بلیک ایجنسی اور دوسری تمام ایجنسیاں اس کا نام سنتے ہی پیچھے ہٹ جاتی ہیں، اور اب تو یہ حالت ہے کہ اگر اعلیٰ حکام کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی ایجنسی عمران کے خلاف کام کر رہی ہے تو اس ایجنسی کو ہی ختم کر دیا جاتا ہے، جافن نے کہا۔ ہم نے ایسا ہی کیا تھا، لیکن عمران کے بجائے ہمارے سامنے یہ ٹائیگر دیوار بن گیا، عمران کا نام تو بھی سامنے نہیں آیا، کرنل ریچرڈ نے کہا۔ یہ ٹائیگر اس عمران کا شاگرد ہے اور بس، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، جافن نے جواب دیا۔ تم نے بتایا نہیں کہ یہ عمران کہاں رہتا ہے، کرنل ریچرڈ نے کہا۔ سر، پاکیشیا دارالحکومت میں کنگ روڈ پر فلیٹ نمبر 200 میں، جعفر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، شکریہ، کرنل ریچرڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ سر، مجھے ایلسا اور ماریا کی ہلاکت کا بے حد افسوس ہے، لوگی نے کہا۔ ہاں، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میری قوت و طاقت ہی ختم ہو گئی ہو، کرنل ریچرڈ نے کہا۔ سر، آپ پلاننگ بنانے میں تو ماہر ہیں، ایسی پلاننگ کریں کہ مشن بھی مکمل ہو جائے اور ان تینوں کی ہلاکت کا بھرپور انتقام بھی لیا جا سکے، لوگی نے کہا۔ मेरा ख्याल है कि इस बार मैं एंडी को और तुम्हें वहां भिजवा दूं। तुमने मिशन मुकम्मल करना है और एंडी इस टाइगर और अगर हो सके तो इस इमरान का खात्मा कर दे, कर्नल रिचर्ड ने कहा। चीफ, फाकेशिया वालों को भी मालूम होगा कि हम अपने सुपर एजेंट्स का इंतकाम लेंगे और मिशन भी मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्रीमिया सुप्रीम पावर है, वो अपने मिशन से कैसे पीछे हट सकता है। इसलिए मेरी तजवीज है कि पहले आप सिर्फ इस टाइगर और इमरान के खात्मे का मिशन मुकम्मल कराएं, इसके खात्मे के बाद इस दिफाई कैमरे को दोबारा हासिल करने का मिशन तैयार करें, लॉगी ने कहा। तो कर्नल ट्रीचर्ड भी अख्तियार चौंक पड़ा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये मिशन किसी दिफाई कैमरे का है? मैंने तो तुम पर इसे ओपन नहीं किया और ना ही तुम्हारी मुलाकात एल्सा, मारिया या रॉजर से हुई, वरना मुझे इत्तला मिल जाती, कर्नल रिचर्ड ने कहा। उसके लहजे में शको शुभात की परछाइयां नुमाया थी। एल्सा मेरी बेहतरीन दोस्त थी, उसने मुझे पाकेशिया जाने से पहले फोन किया और मुझे बताया था कि इस बार इसका मिशन पाकेशिया में मुनक्कद होने वाली किसी दिफाई नुमाइश में से कोई जदीद साख का कैमरा हासिल करना है, लोगी ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन अब ये कैमरा तो न जाने किस स्टोर में पहुंच चुका होगा, अब इसे कैसे हासिल किया जा सकता है, कर्नल रिचर्ड ने मुंह बनाते हुए कहा। चीफ, आप सिर्फ ये मालूम करा दें कि वहां के बड़े बड़े साइंसदान कौन हैं। ये फहरिस्त लाजमन मुख्तसर सी होगी, इनमें से एक साइंसदान लामहाला ऐसा मिल जाएगा जो बूढ़ा होने के बावजूद मेरी उंगलियों पर नाचना अपने लिए फख्र का बायस समझे, और फिर वो कैमरा चाहे 7 पर्दों में या 7 जमीन का 7वें तह में भी क्यों ना छुपाया गया हो, इस साइंसदान के जरिए बाहर आ जाएगा और फिर उसे यहाँ लाना कोई मसला ही नहीं होगा, लॉगी ने कहा। पहले भी ऐसा ही हुआ है, सारा मिशन इंतहाई आसानी से मुकम्मल हो गया, लेकिन आखिर में सब पता चला कि सब कुछ खत्म हो गया, कर्नल रिचर्ड ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। सर, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं इस साइंसदान को इस अंदाज में कवर करूंगी कि वो किसी के सामने इस मामले के बारे में मुंह से भाप तक नहीं निकालेगा। आप जानते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, लॉगी ने बड़े फखरिया लहजे में कहा। तो कर्नल रिचर्ड भी अख्तियार मुस्कुरा दिया। मैंने इस सिलसिले में पहले ही वहां काम कराया था, ताकि अगर दिफाई नुमाइश में दाव ना लग सके तो इसे दूसरे अंदाज में हासिल किया जा सके, कर्नल रिचर्ड ने कहा। तो उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और यह के बाद दीगरे 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस सर, दूसरी तरफ से एक मुद्दबाना निस्वानी आवाज सुनाई दी। रिकॉर्ड रूम से पाकेशिया फाइल नंबर 3 मेरे पास ऑफिस में भिजवाओ, कर्नल रिचर्ड ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद ऑफिस का दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़की हाथ में फाइल उठाए अंदर दाखिल हुई। उसने फाइल कर्नल रिचर्ड के सामने रखी और कर्नल रिचर्ड के मखसूस अंदाज में सर हिलाने पर वापस चली गई। कर्नल रिचर्ड ने फाइल खोली और सफे पलटने शुरू कर दिए, फिर एक सफे पर इसकी नजरें जम सी गईं। ये देखो, ये पाकेशिया का एक ऐसा साइंसदान है जो हमारे काम का भी है और पाकेशिया के टॉप 10 साइंसदानों में से एक है, कर्नल रिचर्ड ने फाइल लॉगी के सामने रखते हुए कहा। डॉक्टर आरिफ, लॉगी ने बड़बड़ाते हुए कहा। डॉक्टर आरिफ की ताजा तरीन तस्वीर भी फाइल में मौजूद थी। फाइल में इसकी मुकम्मल हिस्ट्री, इसके रिश्तेदारों के बारे में तफसील और इसकी मसरूफियात वगैरह सब के बारे में तफसील दर्ज थी, और जिसने भी ये रिपोर्ट तैयार की थी उसने वाकई इस पर बेहद मेहनत की थी। गुड शो चीफ, वाकई हमारे किस्मत हमारे साथ है। ये आदमी मेरे शिकंजे में ऐसा जकड़ेगा कि फिर वो कैमरा खुद लेकर यहाँ पहुंच जाएगा, लोगी ने हैरत भर मुसर्रत भरे लहजे में कहा। ठीक है, लेकिन फिर भी ख्याल रखना कि इस टाइगर इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को इसका इल्म ना हो सके, कर्नल रिचर्ड ने कहा। आप बेफिक्र रहें चीफ, इन्हें कानो कान भी इल्म नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। लेकिन क्या आप एल्सा और मारिया का इंतकाम नहीं लेंगे, लॉगी ने कहा। बाद में ये सब होता रहेगा, पहले हमें हर सूरत में अपना मिशन मुकम्मल करना है, कर्नल रिचर्ड ने कहा। यस चीफ, लॉगी ने कहा। तुम अपने सेक्शन में से सिर्फ 2 आदमी साथ ले जाओ, क्योंकि वहां इस डॉक्टर आरिफ को कवर करने का सारा काम तुमने खुद करना है। जिस टाइप के तुम कागजात बनवाना चाहते हो वो बन जाएंगे। वहां वाइट ब्लैक क्लब का मालिक हेत्रो तुम्हारी हर तरह की मदद करेगा, वो वहां बेहद मौसर है, कर्नल रिचर्ड ने कहा। आप इसे मेरे सामने फोन करके मेरी बात करा दें, फिर मैं इसे खुद ही डील कर लूंगी, लॉगी ने कहा। ठीक है, कर्नल रिचर्ड ने कहा और फोन सेट के निचले हिस्से में मौजूद बटन को प्रेस करके उसने फोन को डायरेक्ट किया और फिर रिसीवर उठाकर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। व्हाइट ब्लैक क्लब, रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। हैथ्रो से बात कराओ, मैं नाराज सर कर्नल रिचर्ड बोल रहा हूँ, कर्नल रिचर्ड ने तेज लहजे में कहा। सर, चीफ हैथ्रो की जगह अब चीफ हार्डी हैं, इनसे बात करें, दूसरी तरफ से कहा गया। तो कर्नल रिचर्ड बेअख्तियार चौंक पड़ा। इसने चूंकि आखिर में लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज लोगी भी सुन रही थी। हेलो सर, मैं हार्डी बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। कर्नल रिचर्ड बोल रहा हूँ हैथ्रो से। हैथ्रो कहाँ है, कर्नल रिचर्ड ने बेसाख्ता लहजे में कहा। सर, हमें तो इतना मालूम है कि बॉस ने एक वेटर के जरिए अंडरवर्ल्ड में काम करने वाले एक आदमी टाइगर को अगवा कराया था। फिर वो वेटर, जिसका नाम रॉबर्ट था, बॉस से मिलने के लिए उसके ऑफिस गया और काफी देर बाद वो वापस चला गया। फिर जब हम बॉस के ऑफिस में गए तो बॉस के सीने में गोलियां मार कर उसे हलाक कर दिया गया था। अभी हम रॉबर्ट को तलाश कर रहे थे कि हमें इत्तला मिली कि रॉबर्ट की लाश एक वीरान इलाके में पड़ी हुई पुलिस को मिली है, और बस इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं हो सका, हार्डी ने तफसील बताते हुए कहा। वेरी बैड, ये हर जगह टाइगर ही हर तरफ मौजूद है, ये क्या बला है, क्या पाकेशिया में इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कर्नल रिचर्ड ने हलक के बल चीखते हुए कहा। सर, बॉस हैथ्रो को तो वेटर रॉबर्ट ने हलाक किया है और खुद वो इस टाइगर के हाथों मारा गया। इस तरह तो सर, इस टाइगर ने उल्टा बॉस हैथ्रो की मौत का इंतकाम लिया है, हार्डी ने जवाब दिया। अब हैथ्रो की जगह तुम काम कर रहे हो, कर्नल रिचर्ड ने कहा। यस सर, आप बेफिक्र होकर हुक्म करें, मैं बॉस हैथ्रो से ज्यादा ताबेदार और आपके लिए कारामत साबित होगा, हार्डी ने खुशामदाना लहजे में कहा। लेकिन वो टाइगर फिर तुम्हारे आड़े आ जाएगा, कर्नल रिचर्ड ने कहा। नहीं जनाब, इसका ताल्लुक सिर्फ बॉस हैथ्रो से था, मेरे साथ नहीं, और ना ही मैं उसे मुंह लगाता हूँ, हार्डी ने कहा। ओके, एक लफ्ज याद रखना, जब भी तुम्हारे पास गोल्डन नाइट के अल्फाज पहुंचे, तुमने फौरी इन अल्फाज को बोलने वाले के हुक्म की तामील करनी है, उसका तुम्हें भारी मुआवजा दिया जाएगा, कर्नल रिचर्ड ने कहा। यस सर, थैंक यू सर, हार्डी ने खुशामदाना लहजे में कहा। तो कर्नल रिचर्ड ने रिसीवर रख दिया। ये आदमी काबिल एतबार नहीं है, इसलिए मैंने उसे टाल दिया है, तुम यहाँ से अपने तौर पर किसी ग्रुप का पता लगा लेना, इस तरह तुम्हें आसानी रहेगी, कर्नल रिचर्ड ने कहा। ठीक है, मैं 2 रोज में तमाम तैयारी करके पाकेशिया पहुंच जाऊंगी, लॉगी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें तैयारी करने में 2 रोज लग जाएंगे, कर्नल रिचर्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। आज का दिन तो जाहिर है आपके साथ गुजर रहा है, इसलिए कल के दिन काम होगा, लोगी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ ठीक है, वेरी गुड। इमरान अपने फ्लैट के सिटिंग रूम में बैठा एक रिसाले के मुताले में मसरूफ था। सुलेमान मार्केट गया हुआ था, इसलिए इमरान फ्लैट पर अकेला था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। तो इमरान ने रिसाले से नजरें हटाए बगैर रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। अली इमरान, MSC DSC ऑक्शन बोल रहा हूँ, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, क्योंकि उसकी नजरें मुसलसल रिसाले पर जमी हुई थी। ब्लैक जीरो बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से ताहिर की आवाज सुनाई दी। जीरो हमेशा होता ही ब्लैक है, व्हाइट जीरो तो नजर ही नहीं आता, और जो नजर ही ना आए तो वो बिल्कुल ही जीरो होगा, इमरान ने रिसाले से नजर हटाए बगैर बात करते हुए कहा। इमरान साहब, आपने ना ही फिर दानिश मंजिल का चक्कर लगाया और ना ही आपने रेड वुल्फ के बारे में कोई प्लान बनाया, हालांकि रेड वुल्फ ने बहरहाल यहाँ खौफनाक वारदात की है, ब्लैक जीरो ने कहा। तुम्हें बैठे बैठे ये ख्याल कहाँ से आ गया, क्या कोई खास बात हुई है, इमरान ने कहा। मिस जूलिया की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि चूंकि तवील अरसे से सीक्रेट सर्विस ने कोई मिशन मुकम्मल नहीं किया और वो फारिग बैठ बैठ कर अब तंग आ चुके हैं, इसलिए क्यों ना टीम को रेड वुल्फ के एजेंसी के खिलाफ काम करने भिजवा दिया जाए, रेड वुल्फ ने कहा। ब्लैक जीरो ने कहा, फिर तुमने क्या जवाब दिया? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने फिलहाल उसे टाल दिया है, लेकिन मेरा अपना ख्याल भी यही है कि रेड वुल्फ आसानी से बाज नहीं आएगी, और उन्होंने यहाँ गार्ड्स को भी हलाक किया है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ब्लैक जीरो ने कहा। लेकिन जो असल मिशन था वो तो खत्म हो गया है। चार गार्ड्स की जगह उनके तीन सुपर एजेंट हलाक कर दिए गए हैं। सफदर और उसके साथियों ने सरहदी गांव में मार्टन और उसके मेजबान मल को और उसके साथियों को हलाक कर डाला। यहाँ टाइगर ने वेटर रॉबर्ट को और फिर रॉबर्ट के मेकअप में उसने ग्रुप लीडर हेथ्रो को भी हलाक कर दिया, इसलिए अब बाकी रह गया है। और वैसे तुमने जूलिया को अच्छी तरह समझा देना था कि एजेंसियां हर मुल्क में मौजूद होती हैं, सिर्फ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ही नहीं, बाकी एजेंसियां भी अपने अपने मुल्क के मफादात के सिलसिले में काम करती रहती हैं। उन्होंने यहाँ कार्रवाई की, हमने इसका भरपूर जवाब दे दिया। अब अगर वो दोबारा कोई हरकत करेंगे तो फिर हम भी उन्हें देख लेंगे। सिर्फ मसरूफियत के लिए दूसरे मुल्कों की एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। इमरान का लहजा फिक्र के आखिरी में सख्त हो गया था और उसके साथ ही उसने रिसीवर पटक दिया। नॉनसेंस, इन्हें बच्चों की तरह समझाना पड़ता है, इमरान ने गुस्से लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा, और उसकी नजरें एक बार फिर रिसाले पर जम गईं। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बजी तो इमरान ने चौंककर फोन की तरफ देखा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSC DSC ऑक्शन बोल रहा हूँ, इमरान ने किताब पर से नजरें जमाए हुए कहा। टाइगर, टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से टाइगर की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। क्या हुआ है, कोई खास बात? इमरान ने चौंक कर पूछा, क्योंकि उसे मालूम था कि टाइगर सिवाय किसी खास बात के यहाँ फ्लैट पर फोन नहीं करता। बॉस, मैंने सिर्फ ये पूछना था कि पाकिस्तान के साइंसदान डॉक्टर आरिफ की मौत कुदरती हुई है या गैर कुदरती, टाइगर ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात थे और गुस्सा भी था। क्या कह रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमने किसी थाने फोन किया है या किसी मुर्दा घर? कौन साइंसदान और कैसी मौत, इमरान ने खासे गुस्सीले लहजे में कहा। आई एम सॉरी बॉस, मैं समझा था कि चूंकि डॉक्टर आरिफ इंतहाई मशहूर साइंसदान है इसलिए उनकी मौत का इल्म आपको होगा, टाइगर ने माजत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर आरिफ कौन है? मैं तो ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। और वो कब हलाक हुआ है? और तुमने क्यों ये बात पूछी है? क्योंकि इसकी मौत कुदरती थी या गैर कुदरती, इमरान ने किताब बंद करके मेज पर रखते हुए कहा। बॉस, मैं अपने होटल से जब दारुल हुकूमत पहुंचता हूँ तो मुझे मुझे तकरीबन रोजाना ही निशात कॉलोनी से गुजर कर जाना पड़ता है। आज से 5 रोज पहले की बात है कि मैं वहां से गुजरा तो एक कोठी के सामने पुलिस के आला अफसरान जमा थे, और फिर मुझे वहां सरदावर नजर आए। वो कोठी से निकलकर कार में बैठ रहे थे, मैंने उन्हें देखा तो कार साइड पर रोकी और वहां कॉलोनी के एक आदमी से पूछा कि यहाँ क्या हुआ है। तो इस आदमी ने बताया कि इस कोठी में पाकेशिया का मशहूर साइंसदान डॉक्टर आरिफ रहता था, वो आज सुबह अपने बेडरूम में मुर्दा पाया गया है। इस आदमी ने बताया कि डॉक्टर आरिफ यहाँ मुलाजिमों के साथ अकेला रहता था। ये मालूमात हासिल करने के बाद मैं वहां से चला गया। फिर मैंने अपने तौर पर डॉक्टर आरिफ की मौत के बारे में इस इलाके के थाने से मालूमात हासिल की तो मुझे वहां तायनात मेरे एक दोस्त ने बड़ी राजदारी से बताया कि डॉक्टर आरिफ बूढ़ा था मगर उसकी फितरत अच्छी नहीं थी, और इस पुलिस ऑफिसर के मुताबिक उसे शुबा था कि डॉक्टर आरिफ की मौत भी किसी खास किस्म की दवा की ज्यादा मकदार इस्तेमाल करने से हुई है, क्योंकि डॉक्टर आरिफ के मैदे के अंदरूनी अज्जा लेबोरेटरी से चेक होकर वापस नहीं आए थे, इसलिए इस बारे में कोई हतमी बात सामने नहीं आ रही। अलबत्ता डॉक्टरों ने सरसरी तौर पर बताया है कि डॉक्टर आरिफ की मौत अचानक दिमाग की रग फट जाने की वजह से हुई है। फिर दूसरे रोज जब मैंने अखबार में डॉक्टर आरिफ की तस्वीर देखी तो मैं बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि इन साहब को तो मैं बेशुमार होटलों और क्लबों में मुख्तलिफ लड़कियों के साथ देखता रहा हूँ, लेकिन चूंकि ऐसे बेशुमार लोग क्लबों और होटलों में आते जाते रहते थे इसलिए मैंने कभी तवज्जो ना दी थी। लेकिन तस्वीर देखकर मुझे फौरन याद आ गया कि चंद रोज पहले डॉक्टर आरिफ को मैंने एक एक्रीमियन लड़की के साथ बड़े मशकूक अंदाज में देखा था। चुनाचा मैं दोबारा निशात कॉलोनी की इसी कोठी पर गया। और वहां साथ वाली कोठी के चौकीदार ने मुझे बताया कि गैर मुल्क की लड़की डॉक्टर आरिफ के साथ रात इनकी कोठी में रही और फिर इसने सुबह सवेरे इस लड़की को कार में बैठकर वापस जाते हुए देखा। इसके बाद 10-11 बजे डॉक्टर आरिफ की मौत की खबर मिली। इस चौकीदार ने इस लड़की का जो हुलिया बताया था वो वही लड़की थी जिसका मैंने जिक्र किया है। मैंने अपने तौर पर इस लड़की के बारे में मालूमात हासिल की तो मुझे पता चला कि जिस रोज डॉक्टर आरिफ की मौत वाकई हुई है वो लड़की जिसका नाम कागजात के लिहाज से लॉगी था, दो मर्द साथियों समेत एकरी में चली गई है। टाइगर ने इस बार पूरी तफसील बताते हुए कहा, तुमने फौरी तौर पर इस लड़की के बारे में मालूमात हासिल क्यों न की? इमरान ने सख्त लहजे में कहा, बॉस बताया यही गया था कि डॉक्टर आरिफ कुदरती मौत मरे हैं, उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है। ये तो अब पुलिस ऑफिसर ने शुभ जाहिर किया है कि डॉक्टर आरिफ ने कोई ऐसी दवा इस्तेमाल की होगी जिसकी वजह से इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा और वो दिमाग की रग के फटने से हलाक हो गए। बहरहाल असल बात तो लेबोरेटरी रिपोर्ट से ही मालूम हो सकती है। मैंने पुलिस स्टेशन फोन किया लेकिन मेरा दोस्त पुलिस ऑफिसर छुट्टी पर था इसलिए मैंने आपको फोन किया है। मेरा ख्याल था कि आपको इस बारे में तफसील से इल्म होगा, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। मैंने इसका नाम तो पहली ही बार सुना है लेकिन क्या गैर मुल्की या लड़कियों के साथ घूमना घूमना फिरना कोई जुर्म है कि तुम इस तरह इंक्वायरी करते फिर रहे हो? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, बॉस आपको पिन कैमरे वाले मिशन का तो इल्म होगा, ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है, टाइगर ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हो, कैसे? इमरान ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में पूछा। बॉस आपको तो मालूम है कि पिन कैमरे के सिलसिले में एल्सा की मदद व्हाइट ब्लैक क्लब के हैथरो मालिक हैथरो ने की थी और इसने वेटर रॉबर्ट के जरिए मुझे बेहोश करवा के एल्सा के पास पहुंचाया था। फिर मैंने वेटर रॉबर्ट से हैथरो का नाम मालूम किया और वेटर रॉबर्ट के मेकअप में हैथरो को हलाक कर दिया। हैथरो के बाद क्लब का मालिक हार्डी बन गया है। ये हार्डी मुझे ज्यादा करीब से जानता है। इसने मुझे मेरी रिहाइश गाह पर फोन किया और मुझसे इसने पूछा कि अगर वो साइंसदान डॉक्टर आरिफ के सिलसिले में कोई काम करे तो मुझे कोई एतराज तो नहीं होगा। मेरे पूछने पर इसने बताया कि एक एक्रीमियन लड़की साइंसदान से दोस्ती करना चाहती है और ये लड़की भी एक्रीमिया की इसी तंजीम से मुतालिक है जिससे एल्सा का ताल्लुक था जिसकी वजह से मैंने हैदर को हलाक कर दिया था। इस पर मैं चौंक पड़ा और मैंने इससे कहा कि वो पहले इस लड़की से मुझे मिलवाए। इसने वादा कर लिया लेकिन फिर चंद रोज तक इससे रابطہ नहीं हो सका और फिर जब डॉक्टर आरिफ हलाक हो गए तो मैंने इससे रابطہ किया तो इसने बताया कि इस लड़की ने जिसका नाम लॉगी था इससे दोबारा रابطہ नहीं किया इसलिए वो भी खामोश हो गया, टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। हूँ ठीक है, तुमने अच्छा किया कि मुझे तफसील बता दी, अब मैं असल हालात मालूम कर लूंगा, इमरान ने कहा और उसके साथ ही इसने रिसीवर रख दिया। न जाने इस मुल्क में क्या हो रहा है, डॉक्टर आरिफ हुसैन जैसे इंतहाई संजीदा साइंसदान खुदा जाने क्यों ऐसी अहमकाना हरकतें करते हैं, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे अब याद आ रहा था कि एक बार सर दावर की तरफ से दी गई एक दावत में उसकी मुलाकात डॉक्टर आरिफ से हुई थी। वो खासे मोअम्मर और बजाहिर इंतहाई वजादार आदमी थे लेकिन अब जो कुछ टाइगर ने बताया था उसके मुताबिक इस उम्र में लड़कियों से इस टाइप का मेल जोल और इमरान की नजरों में इंतहाई काबिले एतराज हरकत थी। इमरान ने एक बार फिर इस फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दावर बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही सरदावर की आवाज सुनाई दी। हकीर फकीर पुर तकसीर हेच मदान बंदा नादान हर वक्त परेशान जिसका ना वहम ना गुमान। इमरान की जबान रवा हो गई लेकिन दूसरी तरफ से रابطہ खत्म कर दिया गया। क्या अदब नाशिनास जमाना आ गया है, पहले लोग इस किस्म की जबान सुनने के लिए तरसते थे और अब अगर ऐसी जबान बोली जाए तो लोग सुनने से ही इनकार कर देते हैं। हाय हेलो ओके तीन लफ्जों के अलावा चौथा लफ्ज ही नहीं आता, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और उसके साथ ही दोबारा नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दावर बोल रहा हूँ, रابطہ कायम होते ही सरदावर की आवाज सुनाई दी। हाय स्वीट अंकल हाउ आर यू, इमरान ने नौजवानों के से अंदाज में कहा तो दूसरी तरफ से सरदावर जो इमरान की आवाज पहचान चुके थे बेख्तियार हंस पड़े। फाइन, सरदावर ने हंसते हुए कहा। अच्छा, आज पता चला कि आप मोटे क्यों होते चले जा रहे हैं। कमाल है, मैं तो ये बात सोच कर दुबला होता जा रहा था कि आप मोटे क्यों होते जा रहे हैं। आज ये राज भी आखिर खुल ही गया। इमरान की जबान एक बार फिर रवा हो गई। फिर क्या पता चला, सरदावर ने हंसते हुए कहा। शायद उन्हें ख्याल आ गया था कि इमरान ने मुसलसल फोन करके उन्हें जिद कर देना है, इसलिए उसे बर्दाश्त ही किया जाए। फाइन आटा मतलब है कि आप फाइन आटा खाते हैं और इसलिए मोटे होते जा रहे हैं। हालांकि फाइन आटे का जो तसव्वुर है वो इसके बिल्कुल उलट होता है। सुलेमान लेकर आया था, वो इतना फाइन था कि आटे में सिवाय फाइन के बाकी सब कुछ निकाल दिया गया था। इमरान की जबान एक बार फिर रवा हो गई और सरदावर दूसरी तरफ बेबसी के से अंदाज में हंसते रह गए। तुमसे बातों में जीतना नामुमकिन है। बहरहाल बताओ, मसला क्या है? मैं इंतहाई अहम रिसर्च पेपर्स के मुताले में मसरूफ हूँ, सरदावर ने कहा। ओह, आई एम सॉरी। आपके एक शागिर्द रशीद हैं, डॉक्टर आरिफ, क्या आप उन्हें जानते हैं? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। इमरान बेटे, मजाक अपनी जगह, लेकिन जो लोग इस दुनिया से चले जाएं, उनके बारे में मजाक अच्छा नहीं लगता, सरदावर ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। मैं दोबारा माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या डॉक्टर आरिफ फौत हो चुके हैं? इमरान ने कहा। हाँ, उसे फौत हुए आज छठा रोज है। लेकिन तुमने क्यों पूछा है? सरदावर ने कहा। इनकी मौत कुदरती थी या गैर कुदरती? इमरान ने पूछा। 100% कुदरती, ब्रेन हेमरेज हुआ था उनका। लेकिन तुम असल बात बताओ, मुझे ख्वाह मखा खलजान में मुब्तिला कर दिया है तुमने, सरदावर ने कदरे झल्लाए हुए लहजे में कहा। उनके मैदे के चंद अज़ा लेबोरेटरी टेस्ट के लिए गए थे। उनका क्या रिजल्ट आया है? इमरान ने कहा। मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम इतनी तफसील से ये सब क्यों पूछ रहे हो, सरदावर ने कहा। सरदावर, डॉक्टर आरिफ जिस सुबह को फौत हुए हैं, उससे पहले रात को उनके पास एक एक्रीमियन लड़की जिसका नाम लोगी था रही है। फिर सुबह सवेरे वो कार में बैठकर चली गई और फिर वापस एक्रीमिया भी चली गई। उसके साथ साथ ये भी बता दूं कि इस लड़की का ताल्लुक एक्रीमिया की उसी एजेंसी से था जिसने पहले पिन कैमरा नुमाइश से चोरी कराया था, और मुझे शक है कि अब भी उन्होंने ऐसी ही वारदात की होगी। मैंने दानिस्ता बराह रास्त आपसे पिन कैमरे के बारे में इसलिए नहीं पूछा कि आपने बताया था कि अब ये पिन कैमरा और ऐसी इजादात बराह रास्त आप अपनी तहवील में रखेंगे, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओह, वेरी बैड। मुझे ये इत्तलात मिलती रहती थी कि डॉक्टर आरिफ अक्सर शहर जाकर लड़कियों से मिलते हैं, लेकिन जब भी इस बारे में इनसे बात हुई तो उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी। और चूंकि वो अपने काम में बेहद माहिर थे और इंतहाई जिम्मेदार भी, इसलिए मैंने भी इस बात की परवाह नहीं की। जहां तक पिन कैमरे का ताल्लुक है, तो पिन कैमरा तो मेरी तहवील में है। अलबत्ता इसके वर्किंग नोट्स मुझसे डॉक्टर आरिफ ने लिए थे। वो इस पर कोई तहकीकी मजमून लिखना चाहते थे, फिर उन्होंने नोट्स मुझे वापस कर दिए, सरदावर ने कहा। कब लिए थे ये नोट्स उन्होंने? इमरान ने पूछा। 11 रोज पहले की बात है। अलबत्ता इन्हें अपनी मौत से एक रोज पहले उन्होंने वापस कर दिया था, सरदावर ने कहा। क्या ऐसा मुमकिन है कि डॉक्टर आरिफ इन वर्किंग नोट से पिन कैमरा तैयार कर सकें? इमरान ने पूछा।
हाँ, लेकिन इसके लिए कम से कम 1-1.5 माह काम करना पड़ेगा, और डॉक्टर आरिफ को इसकी क्या जरूरत थी, सरदावर ने कहा। आप वो नोट्स और कैमरा चेक कर लें, खास तौर पर इन नोट्स को, कि कहीं उनकी कॉपियां तो नहीं की गईं। मैं 1 घंटे बाद दोबारा फोन करूंगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया।
इसका मतलब है कि लॉगी डॉक्टर आरिफ से वर्किंग नोट्स की कॉपी ले जाने में कामयाब हो गई है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर इसने दोबारा फोन का रिसीवर उठाया और इंक्वायरी से नाराक का नंबर मालूम किया। इसने नाराक इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज। रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। रशाडो क्लब का नंबर दें, इमरान ने कहा, तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो इमरान ने क्रेडिल दबाया और फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रशाडो क्लब, राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं फाकेशिया से अली इमरान बोल रहा हूँ, ईफर से बात कराओ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। फाकेशिया से? ओ अच्छा, होल्ड करें, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। हेलो, ईफल बोल रही हूँ, चंद लम्हों बाद ईफल की आवाज सुनाई दी। अली इमरान, MSc DSC ऑक्शन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में जवाब देते हुए कहा। मिस्टर इमरान, आई एम सॉरी, अब मैं आपको रेड बुल्स के सिलसिले में कुछ नहीं बता सकूंगी, ईफल ने माजत भरे लहजे में कहा। क्यों, क्या मुआवजा तुम्हें नहीं मिला? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मुआवजा तो मिल गया था, लेकिन तुमने मेरी मालूमात की बिना पर रेड वुल्फ के 3 सुपर एजेंट हलाक कर दिए हैं, और मुझे जब मालूम हुआ तो मुझे बेहद अफसोस हुआ, क्योंकि बहरहाल वो इक्रीमिया के मेरे मुल्क के सरकारी एजेंट थे। इसलिए आई एम सॉरी, मैं अब मजीद कुछ नहीं बता सकती, ईफल ने जवाब देते हुए कहा। मुझे तुम्हारी हुब्बुल वतनी पसंद आई है, लेकिन एल्सा और मारिया और उनका साथी रॉजर तीनों अपनी हरकत की वजह से मारे गए हैं, इमरान ने कहा। अपनी हरकत की वजह से? क्या मतलब? मुझे जो इत्तला मिली है उसके मुताबिक तुमने इन तीनों को कुर्सियों पर रस्सियों से बांधकर गोलियों से उड़ाया है, ईफल ने कहा। ये काम मेरा नहीं बल्कि मेरे एक शागिर्द टाइगर का है। टाइगर ने एल्सा को एक दिफाई नुमाइश में गार्ड से मशकूक गुफ्तगू करते हुए देखा था। नुमाइश में वारदात के बाद उसने उसका हुलिया बताकर होटलों और क्लबों में उसके बारे में मालूमात हासिल करनी शुरू कर दी। जाहिर है उसकी इत्तला मारिया और एल्सा तक पहुंच गई। फिर उन्होंने यहाँ के ग्रुप को हायर करके टाइगर को अगवा कर लिया और फिर उसे बांध कर इस पर तशद्दुद करके इससे मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मामलात उलट हो गए और टाइगर ने आजाद होकर एल्सा, मारिया और उसके साथी रॉजर को बेहोश करके कुर्सियों पर रस्सियों से बांध दिया और इनसे मालूमात हासिल करके मुझे इत्तला दी, इमरान ने कहा। बहरहाल आई एम सॉरी मिस्टर इमरान, अब इस सिलसिले में मैं मजीद कुछ नहीं बता सकूंगी, ईफल ने जवाब दिया। मुझे इत्तला मिली है कि रेड बुल्स की सुपर एजेंट लॉगी यहाँ फाकेशिया के एक साइंसदान को हलाक करके उससे पिन कैमरे के वर्किंग पेपर्स हासिल करके वापस एक्रीमिया पहुंच चुकी है। मैंने सिर्फ ये मालूम करना है कि अब ये वर्किंग नोट्स किसकी तहवील में हैं, क्योंकि जाहिर है कि ये कर्नल रिचर्ड के तो किसी काम के नहीं है। उन्हें लामहाला किसी लेबोरेटरी में किसी साइंसदान की तहवील में ही दिया जाएगा, इमरान ने कहा। तुम्हें सिर्फ इतना मालूम करना है या इससे ज्यादा? ईफल ने पूछा। इससे ज्यादा का क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर पूछा। लॉगी के बारे में तफसील वगैरह? ईफल ने जवाब दिया। लॉगी तो एजेंट है, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, अब मुझे उसके पीछे भागने से क्या फायदा होगा, इमरान ने कहा। ठीक है, तुम मुझे 1 घंटे बाद फोन कर लेना और इससे पहले $1,00,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तुम्हारा काम हो जाएगा, ईफल ने कहा। ओके, बैंक के बारे में तफसील दोबारा बता दो, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से तफसील बता दी गई और इमरान ने रिसीवर रख दिया और फिर सामने पड़े हुए पैड पर तफसील लिख कर उसने एक बार फिर फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। X2, रब्ता कायम होते ही X2 की मखसूस आवाज सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ ताहिर, इमरान ने कहा। ओह आप, फरमाइए, दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने इस बार अपने असल लहजे में कहा। नाराग के रशाडो क्लब की मालिका से मैंने चंद मालूमात हासिल करानी है। इसके बैंक अकाउंट की तफसील नोट कर लो और उसके अकाउंट में $1,00,000 ट्रांसफर करा दो, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। क्या ये वही पिन कैमरे वाला सिलसिला है? ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा। हाँ, पहले तफसील नोट कर लो, इमरान ने कहा और फिर इसने तफसील बता दी। ओके, मैंने तफसील लिख ली है, लेकिन इमरान साहब वो मसला तो खत्म हो गया था। अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद मुझे समझाया था कि अब मजीद कुछ नहीं करना, ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल था कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन मेरा शागिर्द टाइगर हर वक्त इसी फिक्र में रहता है कि उसके उस्ताद को कोई चेक मिल जाए या चेक मिल जाने का कोई स्कोप बन जाए। चुनाचा वो भाग दौड़ कर रहा है और शायद अब कोई सिलसिला बन जाए। बहरहाल मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला हर उस्ताद को ऐसे शागिर्द रशीद दे, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने क्रेडिल दबाया और फिर सर दावर के नंबर प्रेस कर दिए। दावर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही सर दावर की आवाज सुनाई दी। अली इमरान, MSc DSc ऑप्शन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। इमरान बेटे, मैंने तमाम चेकिंग करा ली है, वर्किंग नोट्स की बाकायदा कॉपी की गई है। वर्किंग नोट्स ऐसे कागजात पर थे कि आम अंदाज से उसकी कॉपी नहीं हो सकती थी, लेकिन डॉक्टर आरिफ चूंकि इंतहाई काबिल साइंसदान थे, इसलिए उसने 0- माइक्रो कैमरे से इसकी कॉपी की है, जिसके निशानात असल पेपर्स पर मौजूद हैं, और मैंने पुलिस से भी मालूमात हासिल कर ली है। लेबोरेटरी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आरिफ ने रात को कोई ऐसी दवा इस्तेमाल की थी जिससे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया जो वो बर्दाश्त नहीं कर सके, और नतीजा ये कि उनके दिमाग की रग फट गई और वो हलाक हो गए। पुलिस ने इनके फैमिली डॉक्टर से भी मालूमात हासिल की हैं। डॉक्टर आरिफ ब्लड प्रेशर के मरीज भी ना थे, अलबत्ता वो पिन कैमरा महफूज है, सरदावर ने कहा। इसका मतलब है कि वर्किंग नोट्स की कॉपी एक्रीमिया पहुंच गई है, और अब उन्होंने ना जाने इससे कितनी कॉपियां तैयार कर ली होंगी, इमरान ने कहा। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम्हें मालूम तो है कि 0- माइक्रो कैमरे से जो कॉपी की जाएगी उससे मजीद कॉपी किसी सूरत नहीं हो सकती, अलबत्ता हाथों से लिखकर कॉपी की जा सकती है, सरदावर ने कहा। इन वर्किंग नोट से असल कैमरा तैयार करने में उन्हें कितना अर्सा लग जाता है, इमरान ने पूछा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 15-20 रोज या ज्यादा से ज्यादा 1 माह, सरदावर ने कहा। इसका मतलब है कि एक बार फिर हम बंद गली में फंस गए हैं, इमरान ने कहा। हाँ है तो बंद गली, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि डॉक्टर आरिफ जैसा साइंसदान इस तरह भी फरोख्त हो सकता है, वरना मैं उसे किसी चीज के करीब भी फटकने नहीं देता, सरदावर ने कहा। सरदावर, जब आपको इत्तलात मिली कि डॉक्टर आरिफ नौजवान लड़कियों और खसूसन गैर मुल्की लड़कियों से मिलता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए था, इमरान ने कदरे नाराज लहजे में कहा। तुम्हारी नाराजगी बजा है इमरान बेटे, और तुम्हारी बात भी दुरुस्त है, लेकिन क्या किया जाए, हम साइंसदान इतने झमेलों में फंसे हुए होते हैं कि इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, सरदावर ने कदरे शर्मिंदा लहजे में कहा। आप ये काम मुझे रेफर कर दिया करें, चलो थोड़ा बहुत दाल दलिया हमारा भी साथ साथ बनता रहेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। दाल दलिया क्या मतलब, सरदावर ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा। मतलब है कि कुछ हिस्सा मिल जाया करेगा और मेरे बावर्ची सुलेमान की थोड़ी बहुत अश्क शोई हो जाया करेगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम वाकई शैतान हो, बहरहाल ठीक है, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा कि तुम्हारे बावर्ची की अश्क शोई तक नौबत ही ना पहुंचे, सरदावर ने हंसते हुए कहा। क्या मतलब, क्या आप उसे कोई जागीर बख्श रहे हैं, इमरान ने चौंक कर कहा। नहीं, बल्कि सर अब्दुल रहमान से दरख्वास्त करूंगा कि वो सुलेमान की अश्क शोई का मुस्तकिल बंदोबस्त कर दें, और मुझे यकीन है कि वो फौरन ऐसा कर देंगे, सरदावर ने कहा। आपका मतलब है कि ना बांस रहे और ना बांसुरी, ना सुलेमान रहे और ना उसकी अश्क शोई, इमरान ने कहा। अरे क्या कह रहे हो, क्या मतलब, सरदावर ने हकीकी हैरत भरे लहजे में कहा। आपकी बात का यही नतीजा निकलेगा, डैडी ने सुलेमान को गोली मार देनी है, केस में अशकों की रिपोर्ट आप तक पहुंचाकर डैडी की जागीरदाराना खुदी पर जरब लगाई है, इमरान ने कहा। तो सरदावर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। ठीक है, अच्छा किया तुमने बता दिया, मैं वाकई सोच रहा था कि ऐसा कर गुजरूं। और सुनो, ये वर्किंग नोट्स वापस लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सरदावर ने संजीदा लहजे में कहा। चीफ की मिन्नत समाजत और खुशामद करनी पड़ेगी, इमरान ने फौरन ही जवाब दिया। मिन्नत समाजत खुशामद, वो क्यों, सरदावर ने चौंक कर पूछा। ताकि उनके गुस्से को दूर किया जा सके, ऐसी रिपोर्ट मिलते ही चीफ को फौरन गुस्सा आ जाता है कि सरदावर सिर्फ साइंसी मामलात में ही क्यों उलझे रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ तो तवज्जो ही नहीं देते। हालांकि आप पाकिस्तान की तमाम लेबोरेटरियों के एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज भी हैं, इमरान ने जवाब दिया। ओह, ये तो वाकई मसला है। तुम्हारा चीफ तो बेहद सख्त आदमी है, सरदावर ने कहा। आदमी? कमाल है, आप उसे आदमी समझते हैं, इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे बेपनाह हैरत हो रही हो। क्या मतलब? क्या वो आदमी नहीं है, मशीन है, रोबोट है, क्या मतलब? सरदावर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हमारे एक मशहूर शायर ने कहा है कि आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। मतलब ये हुआ कि इंसान होना आदमी से भी बड़ा रुतबा है, और आप और चीफ दोनों इंसान हैं, आदमी तो बस मैं हूँ, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। तो सरदावर बेख्तियार हंस पड़े। असल इंसान ही तुम हो, बाकी हम सब तो आदमी हैं। अल्लाह हाफिज, सरदावर ने तवील सांस लेते हुए कहा, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने सामने दीवार पर मौजूद क्लॉक में वक्त देखा, और फिर क्रेडल दबाकर उसने टोन आने पर दोबारा नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रशाड ओकलब, राब्ता कायम होते ही निस्वानी आवाज सुनाई दी। ईफल से बात कराओ, मैं पाकिश यसे अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। यस सर, होल्ड करें, उसकी तरफ से कहा गया। ईफल बोल रही हूँ, चंद लम्हों बाद ईफल की आवाज सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ ईफल, रकम पहुंच गई है या नहीं, इमरान ने पूछा। हाँ, पहुंच गई है, शुक्रिया, दूसरी तरफ से मुसर्रत भरे लहजे में कहा गया। फिर तो तुम ईफल के बजाय ईफल टावर बन गई होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दूसरी तरफ से ईफल बेख्तियार हंस पड़ी। तुम्हारी बात दुरुस्त है, मुआवजा मुंह मांगा मिल जाए तो फिर मामला दूर तक और फौरी निमट जाते हैं। बहरहाल तुम्हारा काम हो गया है। रेड वुल्फ की सुपर एजेंट लॉगी ने पाकिस्तान के एक साइंसदान डॉक्टर आरिफ से एक फार्मूला हासिल किया है। ये असल फार्मूला नहीं है, बल्कि उसके वर्किंग नोट्स हैं। असल फार्मूला किसी सूरत नहीं मिल सकता था, इसलिए लॉगी ने चीफ कर्नल रिचर्ड की इजाजत से वर्किंग नोट्स हासिल कर लिए और वापस आ गई। लेकिन यहाँ इस मामले में एक और मसला खड़ा हो गया है। जब ये वर्किंग नोट्स मुतालका साइंसदानों को भिजवाए गए, तो उन्होंने उन्हें चेक किया, और उन सब की मुत्तफिका राय है कि किसी साइंसदान ने इन नोट्स के अहम पॉइंट्स को मिटाने की कोशिश की है, और कहीं कहीं से इनमें ऐसी तब्दीलियां की गई हैं कि इससे फार्मूला तैयार नहीं हो सकेगा। जिस साइंसदान से वर्किंग नोट्स हासिल किए गए थे, वो भी हलाक हो चुका है। इसलिए ये फैसला किया गया है कि यहाँ बाकायदा साइंसदानों का एक पूरा ग्रुप इस पर काम करे। जब यह हर लिहाज से ओके हो जाए, फिर इसे अमली काम के लिए मुतालिका लेबोरेटरी में भिजवा दिया जाए। चुनाचा अब ये फार्मूला साइंसदानों के खुफिया ग्रुप के पास है, जिसका कोड नेम ब्लू बर्ड ये डबल बी है। जब ये डबल बी ग्रुप इस पर काम फाइनल करेगा, फिर इसे मुतालिका लेबोरेटरी में भेज दिया जाएगा, इफल ने तफसील बताते हुए कहा। ये ब्लू बर्ड साइंसदानों के ग्रुप के बजाय किसी नाइट क्लब का नाम लगता है, इमरान ने कहा। शनाख्त छुपाने के लिए यहाँ ऐसे ही नाम रखे जाते हैं, हाथी का नाम चींटी और छुपकली का नाम डायनोसार, ईफल ने कहा। जवाब दिया ईफल ने जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। इस ग्रुप के बारे में मजीद तफसीलात क्या हैं, इमरान ने पूछा। सॉरी इमरान, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती, गुड बाय, ईफल ने कहा, और उसके साथ ही रابطہ खत्म हो गया। तो इमरान ने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। काफी देर तक वो खामोश बैठा सोचता रहा, और फिर इसने एक बार फिर तवील सांस लेते हुए फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। X2, रابطہ कायम होते ही ब्लैक जीरो की मखसूस आवाज सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। ओ, आप फरमाइए, उसी तरफ से ब्लैक जीरो ने अपने असल लहजे में कहा। जूलिया ने तुम्हें कॉल करके कहा था कि वो सब फारिग बैठे बैठे तंग आ गए हैं, तो इनके लिए मिशन का स्कोप बन गया है, इमरान ने कहा। इनके लिए का क्या मतलब हुआ इमरान साहब, क्या आप साथ नहीं जाएंगे, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान उसकी जहानत पर बेहद हैरान हुआ। तुम्हारे जहन पर वाकई अब दानिश मंजिल की दानिश असर डालने लगी है, अब तुम एक दो लफ्जों से ही असल बात समझ जाते हो। बहरहाल तुम्हारी बात दुरुस्त है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन क्यों, वजह, ब्लैक जीरो ने कहा। पहले तफसील सुन लो, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने सारी तफसीलात बता दी। तो आप अलहदा जाकर क्या करेंगे, ब्लैक जीरो ने पूछा। वहां लाजमन रेड वुल्फ और ऐसी ही दूसरी एजेंसियां चौकन्ना होंगी। और ये भी हो सकता है कि हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत ये इफल कर्नल रिचर्ड को खुद इत्तला दे दे और इन्हें लामहाला मेरी तलाश होगी, इसलिए ये लोग ज्यादा आसानी से वहां साइंसदानों के इस ग्रुप को ट्रेस करके इनसे वर्किंग नोट्स वापस ले आएंगे, जबकि मैं और टाइगर अलहदा जाएंगे और हम अंडरवर्ल्ड से मालूमात हासिल करके अपने तौर पर काम करेंगे, इमरान ने कहा। इमरान साहब, आज तक का तजुर्बा तो यही रहा है कि ग्रुप बंदी बहरहाल फायदेमंद साबित नहीं होती, इसलिए आप टाइगर को अंडरवर्ल्ड से मालूमात हासिल करने के लिए अलहदा वहां भेज दें, अलबत्ता आप टीम को साथ लेकर जाएं, ब्लैक जीरो ने कहा। इस सूरत में तुम्हें एक वादा पेशगी करना होगा, इमरान ने कहा। क्या मतलब, कैसा वादा, ब्लैक जीरो ने चौंक कर पूछा। ये कि अगर टाइगर ने अकेले ये मिशन मुकम्मल कर लिया तो तुम मुझे दो चेक दोगे, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा, तो ब्लैक जीरो बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो आपको मुकम्मल यकीन है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की निस्बत टाइगर कामयाब रहेगा और इसलिए आप इसके साथ रहना चाहते हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, और उसकी दो वजूहात हैं, एक तो ये कि टाइगर मेरा शागिर्द है और उसकी हद तुलवसा कोशिश होती है कि वो काम मुकम्मल करे, दूसरी वजह ये कि जो ग्रुप का नाम सामने आया है ऐसा नाम रखने वाला कोई साइंसदान नहीं हो सकता, लाजमन इसका ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से होगा। और फिर तुम्हें मालूम है कि अब तक सिवाय इसके कि सफदर और इसके साथियों ने मार्टन से पिन कैमरा हासिल किया है, बाकी सारा काम टाइगर ने सर अंजाम दिया है, हत्ता के शेरगढ़ की टिप भी उसी ने दी थी, इसलिए मुझे यकीन है कि ये मिशन टाइगर का है, इमरान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मुझे मंजूर है, ब्लैक जीरो ने कहा। ओके, फिर तुम जूलिया और उसके साथियों को तैयार रहने का कह दो, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया और फिर उठकर अलमारी से लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकाल कर उसने मेज पर रखा और उस पर टाइगर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने एक बटन ऑन कर दिया। हेलो, इमरान कॉलिंग ओवर, इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा। टाइगर अटेंडिंग यू बॉस, ओवर, थोड़ी देर बाद टाइगर की आवाज सुनाई दी। मेरे फ्लैट पर फोन करो, तफसील से बात करनी है, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बजी तो इमरान ने रिसीवर उठा लिया। अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज सुनाई दी। तुमने मुझे जो इत्तला दी थी वो मैंने चीफ तक पहुंचा दी है और चीफ ने मुझे अभी बताया है कि रेड वुल्फ की सुपर एजेंट ब्लॉगी डॉक्टर आरिफ से पिन कैमरा या उसका फार्मूला नहीं ले जा सकी, अलबत्ता डॉक्टर आरिफ ने उसे वर्किंग पेपर्स की नकल दे दी है, इसके बाद डॉक्टर आरिफ को हलाक कर दिया गया और लॉगी वापस एक्रीमिया चली गई है। चीफ ने एक्रीमिया से भी अपने जराये से मालूमात हासिल की हैं, उसके मुताबिक डॉक्टर आरिफ ने हुब्बुल वतनी या किसी भी वजह से इस नकल में ऐसी तब्दीलियां कर दी हैं कि इन तब्दीलियों को दूर किए बगैर वो असल फार्मूले तक किसी सूरत नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने ये फार्मूला साइंसदानों के एक ग्रुप के हवाले किया है, जब वो उसे दुरुस्त कर लेंगे तो फिर ये फार्मूला अमली काम के लिए मुतालिका लेबोरेटरी में भेज दिया जाएगा। इस ग्रुप का नाम, कोड नाम ब्लू बर्ड या डबल बी है। ये कहाँ है, इस ग्रुप में कौन कौन शामिल है, ये सब कुछ नहीं मालूम हो सका। चीफ इस मिशन पर टीम भेज रहा है, लेकिन चूंकि तुमने इस मिशन पर पहले खासा काम किया है इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये काम अगर तुम्हारे हाथों तक मील पा सके तो ज्यादा बेहतर है। इस ग्रुप का नाम बता रहा है कि इसको खुफिया रखने के लिए लामहाला अंडरवर्ल्ड के किसी क्लब का सहारा लिया गया है, इसलिए तुम फौरी तौर पर नाराक पहुंचो और वहां इस ग्रुप का सुराग लगाओ। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में तुम मुझे स्पेशल ट्रांसमीटर पर कॉल कर सकते हो, इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। यस बॉस, आपका शुक्रिया बॉस कि आपने मुझ पर एतमाद किया। वैसे क्रीमिया में पेशावर कातिलों की बड़ी तंजीम का नाम काफी है और उसका नाम काफी अरसे से सुनने में आ रहा है और ये नाम भी ब्लू बर्ड है। ये लोग अपने शिकार को हलाक करके उस पर जो स्टिकर लगाते हैं इस पर नीले रंग का बड़ा सा परिंदा बना होता है, टाइगर ने कहा। हो सकता है कि साइंसदानों का ग्रुप इस तंजीम की पनाह में हो, बहरहाल तुमने ये मिशन मुकम्मल करना है। अल्लाह हाफिज। इंसान ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। कर्नल रिचर्ड अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल के मुताले में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बजी तो कर्नल रिचर्ड ने चौंक कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल रिचर्ड ने कहा। फ्रेडरिक की कॉल है जनाब, उसी तरफ से उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की मुअद्दबान आवाज सुनाई दी। कराओ बात, कर्नल रिचर्ड ने एक लम्हा खामोश रहने के बाद कहा। वो इसी लम्हे खामोश हो गया था कि फ्रेडरिक उसका गहरा दोस्त था और वो एक्रीमिया की किसी सरकारी मवासलाती एजेंसी में काम करता था। वो मवासलाती आला जात का बहुत बड़ा माहिर था, इसलिए अहम तरीन प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में उसे तैनात किया जाता था और उसे इसलिए हैरत हुई थी कि अचानक फ्रेडरिक ने उसे कॉल क्यों की। हेलो, फ्रेडरिक बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। यस, कर्नल रिचर्ड बोल रहा हूँ। खैरियत, कैसे कॉल की है? कर्नल रिचर्ड ने कहा। मैं तो खैरियत से हूँ, अलबत्ता मुझे तुम्हारी और तुम्हारी एजेंसी की खैरियत शदीद खतरे में नजर आ रही है, दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल रिचर्ड बेख्तियार उछल पड़ा। ये क्या कह रहे हो? क्या काम के दबाव का असर तुम्हारे दिमाग पर तो नहीं हो गया जो इस किस्म की बातें करनी शुरू कर दी है तुमने? कर्नल रिचर्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। गो, फ्रेडरिक और वो आपस में गहरे दोस्त थे, लेकिन फ्रेडरिक ने आज से पहले ऐसी बात नहीं की थी। क्या तुम्हारी एजेंसी की किसी लड़की लोगी ने पाकेशिया में कोई मिशन मुकम्मल किया है? फ्रेडरिक ने कहा तो कर्नल रिचर्ड एक बार फिर उछल पड़ा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कर्नल रिचर्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसका मतलब है कि मेरी बात दुरुस्त है, फ्रेडरिक ने कहा। हाँ, लेकिन खुलकर बात करो, कर्नल रिचर्ड ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। यहाँ नाराक में एक फोन कॉल कैच हुई है। मैं इंतहाई जदीद तरीन मवासलाती मशीनरी की चेकिंग में मसरूफ था कि अचानक एक फोन कॉल में एक ऐसी आवाज मेरे कानों से टकराई कि मैं बेख्तियार उछल पड़ा। ये आवाज पाकेशिया के इंतहाई मशहूर एजेंट और मेरे गहरे दोस्त अली इमरान उर्फ प्रिंस ऑफ धम की थी। ये फिर कॉल की जो तफसीलात सामने आई हैं, उनसे पता चला कि तुम्हारी एजेंसी की लड़की लोगी ने पाकेशिया के किसी साइंसदान को चक्कर देकर कोई फार्मूला हासिल किया है, लेकिन ये फार्मूला दुरुस्त नहीं है और उसे दुरुस्त करने के लिए साइंसदानों के किसी ग्रुप के हवाले किया गया है जिसका कोड नेम ब्लू बर्ड या डबल बी है, फ्रेडरिक ने कहा तो कर्नल रिचर्ड की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। किसने ये मालूमात दी है? कर्नल रिचर्ड ने पूछा। सॉरी कर्नल, वो नंबर मैं ट्रेस नहीं कर सका और ना ही आवाज से उसे पहचान सका हूँ, अलबत्ता बोलने वाली कोई औरत थी, फ्रेडरिक ने कहा। तुम जदीद मवासलाती मशीन पर काम कर रहे थे और फिर तुम मवासलाती मशीनरी के बहुत बड़े माहिर हो, तुम चाहो तो ये कैसे मुमकिन है कि तुम इसका फोन नंबर मालूम नहीं कर सकते? तुम इसे दानिश्ता तौर पर मुझसे छुपाना चाहते हो, कर्नल रिचर्ड ने कदरे रूठे हुए लहजे में कहा। ये बात नहीं है कर्नल, ये कॉल भी अचानक कैच हो गई और इस इमरान की मखसूस आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। जो मशीनरी उसे चेक कर रही थी वो ऐसी मशीनरी नहीं थी जिससे उसका माखज चेक किया जा सकता, फ्रेडरिक ने जवाब देते हुए कहा। तुम इमरान को अपना दोस्त कह रहे हो, वो तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया? कर्नल रिचर्ड ने पूछा। इमरान बेहद जिंदा दिल आदमी है, उसके साथ साथ उसका जहन भी बेमिसाल है। चंद साल कबल किसी मवासलाती फार्मूले के सिलसिले में उसे कोई मसला पेश आ गया और किसी ने उसे मेरा नाम बता दिया। वो मेरे घर आया और फिर उसने जिस अंदाज में डिस्कशन की, मुझे तो यूं महसूस हुआ जैसे मवासलाती माहिर मैं नहीं, वो खुद है। बहरहाल उसका मसला हल हो गया। तब से वो जब भी नाराज आता है तो मुझे फोन करके हेलो हेलो जरूर करता है और अगर उसके पास वक्त हो तो मुलाकात भी कर लेता है। और मैंने तुम्हें फोन इसीलिए किया है कि इमरान ने तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल कर ली हैं। अब वो आंधी और तूफान की तरह लोगी और तुम्हें घेर लेगा। इस मामले में वो पूरी दुनिया में मशहूर है, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम खुद भी अंडरग्राउंड हो जाओ और लोगी को भी करा दो, फ्रेडरिक ने संजीदा लहजे में कहा। मैंने भी इमरान के बारे में तफसीलात हासिल की हैं और मुझे उसकी फितरत का बखूबी अंदाजा हो गया है। इमरान सिर्फ अपने मिशन पर निगाह रखता है, और उसका मिशन लोगी रेड वुल्फ या कर्नल रिचर्ड नहीं है, उसका मिशन वो फार्मूला है जो लोगी लेकर आई है, और बकौल तुम्हारे उसे बता दिया गया है कि फार्मूला अब डबल बी के पास है, जबकि हमारा डबल बी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए वो जाने और डबल बी, कर्नल रिचर्ड ने कहा। इसका मतलब है कि तुम अपने एजेंटों से गाफिल रहते हो। लोगी के ताल्लुकात सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है बल्कि वो सेक्रेटरी दिफा की भी खास औरत है, और ये भी बता दूं कि डबल बी ग्रुप के सरबरा से भी लोगी के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, इसलिए लामहाला इस फार्मूले को डबल बी तक पहुंचाने का सारा काम लोगी ने किया होगा, और अगर लोगी इमरान के हाथ लग गई तो वो बड़ी आसानी से फार्मूले तक पहुंच जाएगा, फ्रेडरिक ने जवाब दिया। जो कुछ तुम कह रहे हो मुझे उसका इल्म है, बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि लोगी इमरान के हाथ ना लगे, तुम्हारा शुक्रिया, कर्नल रिचर्ड ने कहा और हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबाया, और फिर फोन पीस के नीचे मौजूद एक बटन प्रेस करके उसने फोन को डायरेक्ट किया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, लोगी बोल रही हूँ, रब्ता कायम होते ही लोगी की आवाज सुनाई दी। कर्नल रिचर्ड बोल रहा हूँ, फौरन मेरे ऑफिस पहुंचो, कर्नल रिचर्ड ने कहा और एक झटके से रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और लोगी इछलाते हुए अंदाज में अंदर दाखिल हुई। बैठो, कर्नल रिचर्ड ने कहा। लोगी सुपर एजेंट थी और हर किस्म के फनून में माहिर थी। क्या हुआ कर्नल, आप बड़े परेशान लग रहे हैं, लोगी ने अपने मखसूस लहजे में कहा। तुमने पाकिस्तान में जो मिशन मुकम्मल किया है उस सिलसिले में एक अहम इत्तला मिली है, कर्नल रिचर्ड ने कहा तो लोगी चौंक पड़ी। कैसी इत्तला, लोगी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले खतरनाक एजेंट अली इमरान ने यहाँ किसी से मालूमात हासिल कर ली हैं, और इसने तुम्हारा नाम लेकर पूछा है कि लोगी का एड्रेस क्या है, लेकिन उसे ये नहीं बताया गया। अलबत्ता ये कंफर्म कर दिया गया है कि ये लोगी वहां से कोई फार्मूला ले आई है, और उसके साथ ही ये इत्तला भी उसे दे दी गई है कि फार्मूला दुरुस्त नहीं है, इसलिए उसे दुरुस्त करने के लिए साइंसदानों के एक ग्रुप के हवाले कर दिया गया है, और इस ग्रुप का नाम ब्लू बर्ड ग्रुप या डबल बी ग्रुप है, और ये भी मालूमात दुरुस्त हैं, कर्नल रिचर्ड ने कहा। किसने इसे मालूमात मुहैया की हैं, लोगी ने पूछा। ये मालूम नहीं हो सका, मालूमात फराहम करने वाली कोई औरत थी, कर्नल रिचर्ड ने कहा। लेकिन मेरा नाम कैसे सामने आ गया, मैं तो किसी के सामने ही नहीं आई, मैं तो डॉक्टर आरिफ के साथ रही हूँ और फिर डॉक्टर आरिफ को हलाक करके उससे वर्किंग नोट्स लेकर फौरन वापस आ गई थी, इमरान ने कहा। लोगी ने कहा, इमरान के बारे में मशहूर है कि इससे जो चीज जितनी छुपाई जाए वो इतनी ही जल्दी उसे ट्रेस कर लेता है। बहरहाल इस बात को छोड़ो कि इमरान ने कैसे सुराग लगाया और कैसे नहीं, असल सवाल ये है कि अब हमें क्या करना चाहिए, कर्नल रिचर्ड ने कहा। मुझे इजाजत दें, मैं दोबारा पाकिस्तान जाकर इस इमरान का खात्मा कर देती हूँ, लोगी ने बड़े सादा से लहजे में कहा तो कर्नल रिचर्ड बेख्तियार हंस पड़ा। आप हंस रहे हैं क्यों, क्या ख्याल है कि मैंने मजाक किया है, लोगी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। तुम अभी सुफरियत के बारे में कुछ नहीं जानती, तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये इमरान इस तरह आसानी से मारा जा सकता है। इसके शागिर्द टाइगर ने रेड वुल्फ के 3 सुपर एजेंट्स को हलाक कर दिया है, अब तुम खुद सोचो कि जिसका शागिर्द ऐसा हो वो खुद क्या होगा, कर्नल रिचर्ड ने कहा। वो इंसान है, फिर आप क्या समझते हैं कि वो मेरी गिरफ्त से निकल जाएगा, लोगी ने और भी ज्यादा बुरा मुंह बनाते हुए कहा। तुम जो कुछ कह रही हो वो दूसरे लोगों के लिए ठीक है, इमरान इन मामलात में यकसर मुख्तलिफ है, बहरहाल अब वो लाजमन इस फार्मूले को वापस हासिल करने के लिए यहाँ आएगा, कर्नल रिचर्ड ने कहा तो लोगी बेअख्तियार उछल पड़ी। ओह फिर ठीक है, मैं इसका मकबरा यही नाराक में ही बनाऊंगी, लोगी ने मुसरत भरे लहजे में कहा। मुझे मशवरा दिया गया है कि मैं तुम समेत अंडरग्राउंड हो जाऊं ताकि इमरान हम पर हाथ ना डाल सके, लेकिन मैंने इस मशवरे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है कि मुझे मालूम है कि इमरान ना तुम्हारे पीछे आएगा और ना मेरे पीछे, वो इस ब्लू बर्ड ग्रुप के पीछे जाएगा। इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ذاتی مقابلوں اور انتقامات پر توجہ دینے کے بجائے ملک کے مفادات پر نظر رکھتی ہے. البتہ اگر کوئی خود راستے میں آ جائے تو دوسری بات ہے, کرنل ریچرڈ نے کہا تو لوگی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے. آپ کا مطلب ہے کہ انہیں یہاں آزاد چھوڑ دیا جائے؟ لوگی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا.